आगे चलिए, इसी का मौजू पूरा होगा आयत 7 में। टॉपिक लिखिए आयत नंबर 7 का, यहूद की बदकिस्मती पर इजहारे अफसोस। और दूसरा टॉपिक, जालिमों को हिदायत नहीं मिलती। आपने मेरे साथ तर्जमा दोहराना है। वह मन और कौन अज़लमु ज़्यादा ज़ालिम है, मिम्मन इससे जो इफ्तरा घड़ ले अल्लाही अल्लाह पर अल-कज़िब झूठ, फहुआ हालांकि वो युदा बुलाया जाता हो इलल इस्लाम इस्लाम की तरफ, वल्लाहु और अल्लाह ला यहदी नहीं हिदायत देता अल कौमत ज़ालिमीन उन लोगों को जो जालिम हैं। चलिए बामुखाबरा तर्जमा, अब इस पे ज़रा सा फोकस करिए। असल वक्त ये होता है जिसमें आप किसी भी आयत का मफहूम पूरा समझ जाएंगे इंशाल्लाह। वमन असलम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब, यह है पहला जुमला। इस शख्स से ज़्यादा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे यानी इफ्तराबाजी करे, जबकि वहुवा युदा इलल इस्लाम, हालांकि वो इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह का फैसला क्या है कि वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों को हिदायत नहीं करता। लिखिए ज़रा इसका तफसीरी खुलासा, यहूद की बदकिस्मती पर इजहारे अफसोस। और मैं आज इसको कहूँगी कि आज ये उन नाम निहाद मुसलमानों के लिए इजहारे अफसोस है कि जो सही इस्लाम को छोड़कर उल्टी पुल्टी चीज़ों में पड़ गए। हज़रत मूसा को तकलीफ़ दी थी उन्होंने, पढ़ चुके हम ऊपर, उसकी सज़ा में अल्लाह ने दिल सख्त कर दिए, टेढ़े कर दिए। पहला नतीजा क्या हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने तक इतना बिगाड़ आ गया कि ईसा अलैहिस्सलाम की जान लेने की कोशिशें कर दी, और अल्लाह ने उनको बचाया, आसमान खोला और ईसा को आसमानों पे बुला लिया। कितनी बदबख्ती है उस कौम की कि जिनके पास कोई हिदायत का पयाम्बर बनकर आए और वो उसकी जान ले ले। दूसरी उनकी अब गलती क्या है, ये आयतें कहाँ उतर रही हैं, किस दौर की आयतें हैं, याद है ना? ये मुसब्बेहात मदनी दौर के सेकंड हाफ 5 और 5, उस दौर में सारा रुए सुखन यहूद मदीना की तरफ इस रंग में था कि अब तुमने ईसा की तो जान लेने के दावे कर ही लिए थे, तुम्हारे पास आखिरी नबी आ गया जो वहुआ युदा इलल इस्लाम की रोशनी में तुम्हें इस्लाम की तरफ बुला रहा है। यानी तुमने ईसा को भी कत्ल करना चाहा और तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ भी ये करना चाहते हो। अल्लाह ने उनको तुम्हारे पास आखिरी रसूल बनाकर भेजा, तुम्हें दावत दे रहे हैं मिलके काम करो, आओ मैं भी मूसा को जानता हूँ, मैं ईसा को जानता हूँ, मैं एक ही ख़ानदान से हूँ, हम सब एक ही अल्लाह की दावत देते थे, और तुम फ़िरका परस्ती में पड़ गए हो, नाम परस्ती में पड़ गए हो, गिरोह परस्ती और मसलक परस्ती में पड़ गए हो। तो फिर याद रखो कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता जो जुल्म करते हैं। क्या पता चला इस आयत में कि जब अल्लाह किसी को हिदायत की दावत देता है, बंदा उसके जवाब में क्या रिस्पॉन्ड करता है, इससे बहुत गहरा ताल्लुक़ है कि उसको आगे क्या मिलता है। हम इनको उस कौम से हटाकर ज़रा सा अपने लिए ले लें। आज उम्मत मुस्लिमा जब इस्लाम की तरफ बुलाई जाती है, सच्चा इस्लाम पेश किया जाए, तो सबसे पहला सवाल क्या करते हैं, फलां का मसलक क्या है, वो किस गिरोह से है, वो किस जमात से है, उसका क्या ताल्लुक़ है, उसका क्या नाम है, ऐसे है और वैसे है। तो असल में ये आयत जो ना, ये पिछली आयत का ततीम है। दोनों का इकट्ठा खुलासा कर देती हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, उन्होंने बहुत वाजे होते हुए अपने आप को अल्लाह का रसूल करार दिया, यानी अपनी निस्बत किसी इंसान से या जमात गिरोह के नाम के साथ अपना तारुफ देने से बजाय मेन चीज को रखा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तीन बातें भी उन्होंने अपनी बता दी जब भी हम पढ़कर आए। इस आयत में अल्लाह ताला उन लोगों की महरूमी की बात कर रहे हैं, नंबर एक शुरू दौर में जिन्होंने ईसा को ना माना और कत्ल की कोशिश की, तो अल्लाह ने बचा लिया ना, वो तो अपने जोम में उनको सूली पे चढ़ा ही चुके थे। और दूसरा अब यह कि जिस वक्त आयतें उतर रही हैं यहाँ, वो मदीना में होने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे। आज हम कितना रोते हैं मदीना जाने के लिए, कभी अल्लाह मदीना ले जाए, मदीना की गलियाँ, मदीना और मक्का और ऐसे और वैसे ले जाएगा तो क्या करेंगे अब हम। अबू जाहल किधर था? मक्का में था। अब्दुल्ला बिन उबई किधर था? मदीना में था। तो इस आयत के ऊपर ये जो आखिरी हिस्सा ना, ये बहुत अहम है। ला यहदी, अल्लाह नहीं हिदायत देता, अल कौम ज़ालिमीन। और ज़ालिम कौन होता है? जो किसी चीज़ को उसका हक ना दे। ज़रा शायद के लफ्ज़ों पे चलिए और फिर एंड पे समअप करते हैं। वाह, और वाह से क्या पता चला? इस आयत का भी ताल्लुक, यानी इसके मज़ामीन पिछली आयत की रोशनी में समझेंगे। वह मन और कौन, इंग्लिश में आप कहते हैं ना हु, कौन, मन का लफ्ज़ बीच में आता है ना तो जो होता है, और जब सेंटेंस के शुरू में, तो जैसे हु को बीच में और शुरू में लाएं तो फ़र्क हो जाता है ना, क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चनिंग स्टाइल है। वमन और कौन, अज़लमु ज़्यादा ज़ालिम है। जुल्म किसको कहते हैं? अंधेरे को कहते हैं। अज़ुल्मतु रोशनी ख़त्म हो जाना, मादूम हो जाना, इसकी जमा क्या है? जुलुमात, औ का जुलुमातिन फी बहरी लुज्जिश। और क़यामत के दिन जो अंधेरे सबसे ज़्यादा होंगे उसमें क्या होगा? नंबर एक शिर्क, लिखिए शिर्क का अंधेरा, कुफर का अंधेरा, फिर जहालत का अंधेरा, फिस्को फजूर का अंधेरा। ठीक है, तो नूर एक है, जुल्म की जगह जुलुमात जमा में आता है। क्या पता चला कि हिदायत का रास्ता एक ही होता है और गुमराहियों के रास्ते बहुत सारे हैं। अल्लाह हमें जुल्म से बचाए। हदीस में आता है कि जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का ज़रिया होगा। हज़रत अली फरमाया करते थे कि मैं दुनिया से मज़लूम बनकर जाऊँ, ये मुझे गवारा है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं वहाँ जाकर जालिम करार दिया जाऊँ। तो जुल्म से बचिए, घरों का जुल्म, सास बहू का जुल्म, मेट पे जुल्म, मासी पे जुल्म, और भाई बहनों का जुल्म, और विरासत का माल खाने का जुल्म। ये तो एक पूरा टॉपिक है ना, कि जिसको आज हम भूल कर ही जिए तो खुश जी सकते हैं। तो अरबी ज़बान में लफ्ज़ जुल्म इतना वाइड स्प्रेडेड है, कभी दूध को कोई थोड़ी सी वो दही की फुटकी लगा कर छोड़ दे योगर्ट बनाने के लिए, अभी योगर्ट बना कोई नहीं और कोई उस दूध को पी ले, कभी ऐसा हो सकता है ना? तो अरब लोग उसके बारे में कहते हैं ज़लम तो सिका, इसने जुल्म किया है इसके ऊपर पीने पे। और वो दूध जो कच्चा पक्का सा दूध है उसको जलीम कहते हैं। जी, कभी कभी ज़मीन खोदी जाती है और ऐसी जगह से लोग खोद लेते हैं जहाँ से नहीं खोदना चाहिए था, तो उसके लिए अरब लोग कहते हैं ज़लम तो अर्थ, हमने ज़मीन पे जुल्म किया, और उस ज़मीन को कहते हैं मज़लूमा। पता नहीं हम कहाँ कहाँ जुल्म कर जाते हैं, और जो मिट्टी उसमें से खोद के बाहर निकालेंगे उसको जलीम कहते हैं। जी, अल्लाह अकबर। जुल्म के मुतरादिफात लेना चाहते हैं? अस असा, कभी सुना भी नहीं होगा, वल्लैली इज़ा अस असा, फिर गसका इला गसकिल्लैल, फिर अगतशा वक्तश लैलुहा वखरज दुहाहा, फिर वक़बा वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, और फिर सजा वल्लैली इज़ा सजा के सेंस में आप देखते हैं इसको। और ज़लमा तो जुल्म है ही है, व इज़ा अस्लम अलैहिम क़ामू, सब का फ़र्क देख लीजिए। अंधेरे के लिए अरबी ज़ुबान में कितने लफ्ज़ हैं? अस असा कहते हैं सुबह या शाम का धुंधल का, यानी बिल्कुल जब सुबह होनी होती है उससे पहले थोड़ी सी रोशनी, और रात जब होती है मगरिब के बाद का वक्त कह लीजिए। गसक कहते रात के इब्तदाई हिस्से को, गतशा कहते इतनी तारीकी की चीज़ के चीज़ें ही ना नज़र आए, जिसको आप कहते हैं जेट ब्लैक, वक़बा जब चीज़ें तारीकी में बस गायब होना शुरू हो जाए, और सजा कहते हैं रात का सन्नाटा, सर्दियों की रात सोचिए और ख़ामोशी तारीकी, और नबी को अल्लाह क्या कहते हैं, वल्लैलिज़ा सजा, सुभान अल्लाह। और जुलुमात अंधेरे के लिए आम लफ्ज़ है, चाहे रात का अंधेरा हो या दिन का हो। तो देखिए सिर्फ अंधेरे के लिए अरबी में कितने मुख्तलिफ़ लफ्ज़ हैं, जो सारे ही आपको याद भी आ गए होंगे आयतों के नाते से। अल्लाह ताला में वक्त में बरकत दे दे। मिम्मन, इससे जो इफ्तरा घड़ ले, झूठ घड़ना, इल्ज़ाम लगाना, अरबी में इसके लिए तीन लफ्ज़ आते हैं, लिखिए मुतरादिफात। एक तो है बुख्तान, फबुहित अल्लज़ी कफर, मबहूत होना उर्दू में अब बोलते हैं, हाज़ बुख्तान व नज़ीम। फिर दूसरा लफ्ज़ है इफ्क, इफ्क, हाज़ इफ्कुम मुबीन। तीसरा लफ्ज़ है इफ्तरा, ठीक है, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाही कज़ीबा। फ़र्क लिखिए, यानी घड़ लेना, बात बना लेना, बनावटी बात करना, इसमें फ़र्क है। इफ कहते हैं बेबुनियाद इल्ज़ामात को, असल बात को तोड़ मोड़ कर बनाया हुआ किस्सा। और मैं इसको अक्सर कहती हूँ हाफ ट्रुथ्स। कुछ लोग ऐसे बातों के धनी होते हैं, ऐसी बात बनाकर पेश करेंगे आपको लगेगा भी नहीं कि ये झूठ बोल गए, जिसको क्या कहते हैं उल्लू बनाना या शीशे में उतारना, ये लफ्ज़ है। इस तरह बुख्तान, ऐसा इल्ज़ाम जो दूसरे को हैरान कर दे कि मैंने कब किया ये, फबूहित अल्लज़ी कफर, कुरान में आता है। इफ्तरा बनावटी अकायद, अकीदे की बनावट के लिए आता है, खुद तराशीदा किस्म के इरादे, जैसे लोग बहुत सारी चीज़ों में शिर्क तक पहुंच जाते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो खुद ही बनाई हों और इसलाह की बजाय वो बिगाड़ पैदा कर दें। अल्लाह ही अल्लाह पर, अलकज़िब झूठ, कज़िब वो है जो पीछे सिद्क में गुजरा, उसका अपोजिट है ये सारा, उसी से बिल्कुल वही सेंसारी बनेगी। झूठ के लिए भी अरबी में तीन चार लफ्ज़ हैं, कज़बा, अफका, तकव्वला। लव तकव्वला अलैना बाज़ अलअक़ाबील, सूरत अल-क़यामत में आता है। फ़र्क क्या है, कज़िबा जब आता है ना तो खिलाफ वाक़िया बात या झूठ, आम लफ्ज़ है। एफ़ का तो किसी पे बहतान तराशना, और तकव्वला ना सिर्फ ये कि झूठ बनाना बल्कि दूसरे के नाम लगा देना कि ये इसने किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह कहते हैं कुरान में सबसे सख्त आयत है आपके बारे में, कि वल तकव्वल अलैना बाज़ अलअक़ाबील ला हसन मिनहु बिल यमीन सुम्म लकतान मिनहुल वतीन। अगर अल्लाह के नबी ने कुरान से कुछ छुपाना होता ना तो ये आयतें छुपा देते, क्योंकि ये आपके अगेंस्ट जा रही हैं। तो अल्लाह ताला ये दिखाना चाहते हैं कि कुरान नबी का कलाम नहीं, मेरा कलाम है। खैर, वहुवा, और हालांकि वो युदा बुलाया जाता हो, युदा का लफ्ज़ सुनने से भी लग रहा है ना मजहूल है, दावत से लफ्ज़ है किसी को पुकारना। पुकारने के लिए एक लफ्ज़ आता है निदा, हरफे निदा जैसे होता है, और एक दुआ, पुकारना। तो यहाँ उसी फ़र्क को सामने रखिएगा, किसी को बुलाने के लिए जो मुख्तलिफ लफ्ज़ अरबी में आते हैं उसमें से एक लफ्ज़ दुआ है, ठीक है। दूसरा लफ्ज़ है नादा, एक लफ्ज़ है अज़ना, इब्तहल। अभी फ़र्क बताती हूँ, सिर्फ आयतें या बाद में नोट कर लें बेशक। जहरा, फ़र्क लिखिए, अरबी ज़ुबान में बुलाने के लिए पांच छह लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, सिमिलर वर्ड्स। क्या दुआ है? बामानी कलाम, आम या दबी आवाज़ से मदऊ को मुखातिब करना। ये जो दावत इल्लाह का काम है ना, ये दबी आवाज़ों से भी हो सकता है, आम आवाज़ों में बात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक आर्टिफिशियल वॉइस की ज़रूरत नहीं होती। निदा बुलंद आवाज़ और बेमानी कलाम, ऐसी चीखो पुकार। और मुनादा का नाम लेना भी ज़रूरी नहीं होता, यानी आप जिसको बुला रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं कि उसका नाम भी लें। अजान या ताज़ीन, बुलंद आवाज़ से पुकार कर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, बुलाना। तो जब नमाज की अजान होती है तो उसका क्या मतलब है कि हैया अलैहिस्सलाम, नमाज की तरफ आओ। इबताह, इब्तिहाल किसको कहते हैं, आयत मुबाहला है ना कुरान में, बददुआ की किस्म है। सुम्मा नबतहिल का लफ्ज़ आता है, यानी जब दो फरीकों में दलाइल की बुनियाद पे कोई काम ना हो तो फिर उनको एक दूसरे के साथ एक ख़ास मुनाजरा करवा कर बददुआ का अंदाज़ इख्तियार किया जाता है। जहरा, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू, इतनी बुलंद आवाज़ से पुकारना जिससे कम अज़ कम साथ वाले सुन सकें। इलल इस्लाम, इस्लाम की तरफ, इस्लाम का लफ्ज़ सलामती, सीन लाम मीम से है, आफात से पाक रहना, ज़ाहरी और बातनी। दुआ करें इस इस्लाम को हमारी सलामती का अल्लाह ज़रिया बना दे। इल्ला मनतल्लाह बिकल्बिन सलीम, आसान लफ्ज़ है, इसके बहुत सारे इतलाकात आपको ख़ुद भी आते हैं। इस्लाम, मुस्लिम, यहाँ असल में सौंपने के मानों में सबमिट, सरेंडर। अरबी ज़ुबान में इसके डिफरेंट एंगल्स के, इस्तजाबा, असलमा, कनता, जाना, सब की आयतें आपको मेरा हल ज़बानी ही याद होंगी कि या अय्युल्लज़ीना मनुस्तजीबु लिल्लाह। इसी तरह इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम, काल अस्लम तो लि रब्बिल आलमीन। यकनुत कहाँ था, 22वें पारे की पहली आयत, व मैं यकनुत मिन कुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही। और जाना किधर आता है, सूरत अलहसाब में, वहीं यकुल लहुमुल हक्कु या तू इलेही मुज़इनीन। फिर तबिया, फमन तबिया खुदाया, फिर इक्तदा, उर्दू में भी बोलते इक्तदा करना जी, फब्बी खुदा हु मुक्तदिख। फिर उस्वा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फिर तौन से इता, कालता अतैना तौईन। घूम जाता है ना दिमाग, टू मच इन्फॉर्मेशन है। ये ऐसे लगता है कि छोटे से कंप्यूटर में आपको ज़्यादा बड़ी फाइलें खोलनी पड़ती हैं। तो दिमागों पे बोझ ना दे, दिल पे दे। अभी हमें कितना सीखना है, कितना वक्त लगाना है। और मैंने देखा है कि असल कुरान के लफ्ज़ों में डूब के ही मज़ा आया। तबिया जब आता है ना, इत्तबा करना, किसी के पीछे चलना, उसके जैसे काम करना। देखिए, बच्चा माँ के कदमों के पीछे चलता रहता है, गाय का बछड़ा, वो जब पैदा होता है ना, उसके फौरन बाद खड़ा होना शुरू होता है और माँ के पीछे जाता है, उसको तबिया कहते हैं। तो नबी की इत्तबा का मतलब पता है क्या? चुप, कुछ ना पढ़ो, कुछ ना सुनो, बस जो कह रहे हैं तुम भी करते जाओ। उस वक्त किसी मिसाली किरदार की इत्तबा करना और हमदर्दी के जज्बात के साथ करना, और इताअत दिल की खुशी से, तौन से। नफिल को क्या कहते हैं अरबी में? तत्वो। इस्तजाबा, हुक्म कबूल करना और इस पर अमल करना, बात मान लेना, ये बड़े से भी मुमकिन है और दूसरों से। असलमा यानी मुस्लिम होना, किसी की रजा के सामने सर तस्लीम खम करना। अनाता, इबादत में ऐसी इताअत जिसमें आजजी और तवाम, यानी कनूत में दो चीज़ें हैं, आजजी करने के बाद भी आजिज़ रहो, और दवाम इन कॉन्टीन्यूटी, हमेशा करो। और जाना, अपने मुफाद की खातिर इताअत करना, ये मुनाफिकों का काम है। जहाँ उनका फ़ायदा होता है वहाँ बात मान लेते हैं, जहाँ नहीं होता वहाँ सुनते भी नहीं। अल्लाह ताला ऐसे निफाकाना रवैये से बचाए। आगे देखिए, वल्लाहु ला यहदी, नहीं हिदायत देता। हिदायत का लफ्ज़ कल हमने किया था, नरमी और आजजी और मोहब्बत से किसी को गाइड करना। हिदायत के लिए लफ्ज़ दो हैं, हदी, हजुन, कलायत, बुदना, नुसुक। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, अलकौमा, इन लोगों को, काम का लफ्ज़ कितनी दफ़ा आ गया अभी तक किस सूरत में, और इसके मुतरादिफात में, मुस्तकीम, सवा, सुवा, कसत और सदीद। अज़ालिमीन, जो जालिम हैं। खुलासा ले लीजिए, बस मैंने वर्ड्स एनालिसिस स्किप कर दी, आप ये लीजिए कि सीखा क्या। हम 7 आयतें कर चुके अल्हम्दुलिल्लाह। इस सूरत का जो एक कह लीजिए ना कि बड़ा हिस्सा हमने पूरा कर दिया। इस आयत से क्या सीखा? नंबर एक, अल्लाह की तरफ किसी को शरीक नहीं करना, क्योंकि जुल्म है ये। वमन असलमु की बात है ना, तो अल्लाह ताला को ऐसे लोग नहीं पसंद जो के अल्लाह के साथ शिर्क देते हैं करार किसी को। फिर अल्लाह के हलाल करार दिए को हराम नहीं करार देना, और हराम को हलाल नहीं करार देना, ये सब झूठ हो जाएंगे। यानी झूठ की मुख्तलिफ किस्में हैं ये। कोई इस्लाम की तरफ बुलाए तो मुंह मोड़ दो, नो आई डोंट नीड इट, बल्कि माइंड करना, गुस्सा करना, मैं क्यों आपकी बात सुनूँ, आप ये क्यों कह रहे हैं। और जबकि इस्लाम के वाज़ह दलाइल सामने आ चुके हों। अल्लाह किन लोगों को हिदायत नहीं देता, इस आयत की रोशनी में लिखिए। नंबर एक, जो जुल्म पर कायम रहे, मन असलमू में। दूसरी बात, हक के मुकाबले में खड़ा हो जाए, ईगो है ना, पता है कि मैं गलत हूँ लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं हूँ ना, तो मुझे क्या ज़रूरत है आपकी बात मानूँ। तीसरी बात, उस बंदे को हिदायत कभी नहीं मिलती जो नसीहत आने के बाद भी जुल्म से बाज ना आए और अगली बात हक को ठुकराए। ऐसे बंदे को ना तो कोई दलील और बुरहान फ़ायदा देती है, यानी जो जुल्म पर कायम रहे, नसीहत के बाद भी जुल्म से बाज ना आए, उसको कोई दलील, कोई बुरहान फ़ायदा नहीं देती, और जो हक़ के मुकाबले में खड़ा और ख़ास तौर पे फिर बातिल की मदद भी करे, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला यहाँ रोक लेता है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आपको मुझे बेहतरीन तरीके से इनको करने वाला बनाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।